மங்களம் பகவான வீரோ மங்களம் கௌதமோ முதலி மங்களம் குந்த குந்தாரியோ ஜன்னதர்மோத்தமங்கலம் ஆத்மா ஞானம் ஸ்வயம் ஞானம் ஞானாதன்யக்கரோதி கிம் பரபாவஸ்ய கர்த்தாத்மா மோகோயம் வ்யவஹாரிணாம் அஜ்ஞானதிமிராந்தானாம் ஞானாஞ்சனசலாசயா சக்ஷுருன்மீலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீகுரவே நிமித்த உபாதான் கி சர்ச்சா ஹம் கர் ரஹே ஹே இப்போ ஹர் சமய ஹம் ஸ்வாத்யாய கே ஷுருவாத் மே மங்களாச்சரண் கேதே ஹே. अभी किस किस को याद किया हमने? पांचों ही परमेश्वरों को, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, और अंत में कह गया कि जिन गुरुओं ने मुझे ये सिखाया उनको मैं यानी चक्षुरुन मिलितम ये न जिन्होंने मेरी आंखें खोल दी उनको मैं नमस्कार करता. जिन गुरुओं ने हमें निमित्त उपादान का स्वरूप बताया, जिन गुरुओं ने ऐसा बताया कि गुरु से ज्ञान होता ही नहीं, ऐसे तेरे ज्ञान से तेरा ज्ञान हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा, ऐसे गुरु को हम सबसे पहले यहाँ वंदन कर रहे हैं. जब ज्ञान होता है निमित्त से कुछ नहीं होता तो व्यवहार में कृतज्ञता नहीं होती. लोगों को ऐसे ऐसा बताएंगे तो कोई निमित्त ये नहीं सब बाकी तो उड़ा देंगे. निमित्त से कार्य नहीं होता तो गुरु को उड़ा देंगे तो ऐसा नहीं होता. जिसको सच्चा ज्ञान होता है उसको पंच परमेश्वर के प्रति, जिनके द्वारा हमें ये मार्ग मिल गया उनके प्रति अतीव आदर भाव आता है और वो हम व्यक्त भी करते हैं. क्योंकि नमोकार मंत्र में ही हमने अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय को याद करके उनको नमस्कार किया है और उनको नमस्कार करके हम यहाँ स्वाध्याय का प्रारंभ करते हैं. क्योंकि जो जो व्यवहार जो होता है लौकिक, जो आपस में जो एक दूसरे के साथ व्यवहार, लौकिक व्यवहार जिसको कहते हैं, उसमें तो ऐसे ही निमित्तों के प्रति ही ऐसे आदर भाव आदर बुद्धि हो जाती है, लानी नहीं पड़ती थी. देखो कल हमने देखा था कि निमित्त और उपादान ये किसके नाम है अश्रुबेन? निमित्त और उपादान ये किसके नाम है? कारण के. तो कारण किसके कारण? तो कार्य के कारण कहलाते. तो कार्य के कारण है तो उपादान को हम कारण कहे तो कार्य को क्या कहेंगे? उपादेय. बराबर. यदि हम निमित्त को कारण कहेंगे तो कार्य को क्या कहेंगे भाई? निमित्त की अपेक्षा नैमित्तिक. जब उपादान को कारण कहेंगे तो कार्य को हम उपादेय. कहा हमने कारण को. जब निमित्त की ओर से कथन करेंगे तो उसी कार्य को. ऐसा नहीं कि निमित्त का कोई अलग नैमित्तिक कार्य है, जो उपादेय है वही नैमित्तिक है. कारणों में फर्क करने के कारण उसी एक पर्याय को हमने अलग अलग दो नाम दिए. यानी नैमित्तिक कोई अलग हो और उपादेय कोई अलग बात हो ऐसी है ही नहीं बात. कार्य तो जो एक ही हुआ. कार्य किसको कहते हैं दीपाली? कार्य यानी कार्य के दूसरे क्या क्या नाम है? पर्याय, परिणमन और कर्म, दशा, हालत, अवस्था, ऐसे जो अलग अलग उसके नाम है. तो हमने देखा है कि प्रत्येक द्रव्य में प्रत्येक गुण की हर समय एक एक पर्याय होती रहती होती रहती होती रहती. कब से? अनादि से. कब तक? अनंत काल तक रहेगी. तो अनादि से अनंत काल तक हर समय इतने सारे अनंत अनंत कार्य हो रहे हैं तो उस प्रत्येक कार्य में उपादान यानी अपना अपना द्रव्य और निमित्त उस समय अन्य द्रव्य की जो पर्याय इस कार्य में हमें अनुकूल जैसे दिखती है उस पर आरोप आता है कि ये द्रव्य ने कार्य इसका किया, आरोप आएगा, परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि उपादान उपादेय जो है संबंध वो एक ही द्रव्य का अपने गुण के साथ, अपने पर्याय के साथ होता है, द्रव्य का कहो या गुण का कहो, और निमित्त नैमित्तिक तो भिन्न भिन्न चीजों में होती। अभी यहाँ तो हम दो भिन्न द्रव्यों में ही लगाएंगे, एक ही द्रव्य के अंदर जो अनंत गुण है उसकी जो सूक्ष्मता में जाके बात करेंगे वो ये बात यहाँ नहीं उठा रहे हैं। अभी अभी इस स्टेज पर हम क्या कहेंगे, निमित्त नैमित्तिक दो द्रव्यों में लगता है। तो हमने कल उपादान और निमित्त के भेद और प्रभेद भी देखे थे, उसके पहले हम उसकी परिभाषा को जरा दोहराते याद करते। तो उपादान किसे कहते हैं हिंदू में, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसको उपादान कहते, और निमित्त किसे कहते हैं बोलो बे, कार्य रूप परिणमित न हो बराबर, हाँ बहुत अच्छा, आप फिर दोहराना वसन जी भाई, नहीं नहीं निमित्त निमित्त आप फिर दोहराइए, निमित्त किसे कह रहे हैं, नहीं उसके पहले पहले स्टेप क्या है, पहला क्या मुद्दा है, वो कार्य रूप परिणमता है क्या नहीं है, निमित्त कार्य रूप पर्याय रूप परिणमता है क्या, आप पुस्तक में देखकर फिर बताना, दीपाली आप बोलो, आप सुनना फिर मैं आपको बोलूंगी, हाँ हाँ तो क्या कहा इन्होंने, तेजू भाई आप बोलना, न परिणमित परिणमित न हो परंतु हाँ कार्य की उत्पत्ति में उसको निमित्त कहते हैं या निमित्त कारण कहते हैं, आप फिर दोहरा सकेंगे, पहले पहले स्टेज क्या है, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित न हो, हाँ हाँ कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सकता उसको क्या कहते हैं हम, निमित्त कहते हैं। आप देवेंद्र भैया बोलना, हाँ बराबर, यानी जो स्वयं कार्य रूप परिणमित न हो वो तो पर्याय रूप परिणमता नहीं, जिस पर्याय की हम बात कर रहे हैं उस रूप तो वो निमित्त नहीं परिणमा, घड़े रूप कार्य हुआ तो कुम्हार स्वयं घड़े रूप परिणमित नहीं हुआ, परंतु घड़ा रूप जो कार्य हुआ उसकी उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप किस पर आया, वहां तो बहुत सारे लोग थे, कुम्हार का गधा भी था, कुम्हार भी था और कोई देखने वाले लोग भी थे, तो आरोप किस पर आया, कुम्हार पर, तो उसको हमने निमित्त कहा। ये तो हुए डेफिनेशन उपादान की और निमित्त, हमने उपादान के भी बहुत सारे प्रकार देखे और निमित्त के भी अभी देखने हैं, उसके खाली नाम सुने थे, तो उपादान के कौन कौन से भेद देखे थे, हाँ बोलिए बराबर, त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान, और क्षणिक के भी दो भेद, हाँ कौन कौन से, बहुत अच्छा, हाँ बराबर, हाँ क्षणिक उपादान, अनंतर उत्तर पर्याय जो तत्समय की योग्यता है, यानी तत्समय की योग्यता कहना, अनंतर उत्तर कहने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस पर्याय की हम बात कर रहे हैं वह पर्याय उसी समय उत्पन्न हो ऐसी योग्यता उसी पर्याय में है, इसको कहते शॉर्ट में कहना है तो तत्समय की योग्यता, तो तो तत्समय की योग्यता ही कंट्रोलर जिसको कहते हैं। कार्य अभी क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं था, जैसे घड़ा अभी क्यों बना, मिट्टी तो पड़ी थी बहुत दिन से, तो तत्समय की योग्यता जो है वही उसका नियामक कारण है। और उसका पहले वाला कारण कौन सा था जिसको बहरूप कारण कहते हैं, तो पहले मिट्टी का पिंड था, पिंड का व्यय होकर घड़ा बना, तो हमने पिंड को भी पूर्व वाला यानी अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, और ये इसको क्षणिक उपादान का ये भी उसको हमने कारण कहा, क्योंकि उसका व्यय होकर घड़े की उत्पत्ति हुई है। तो हमने बहुत उसके सारे उदाहरण भी देखे थे। ये तो हुए उपादान के दो भेद, त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान। त्रिकाली उपादान द्रव्य या गुण होता है जिसकी ये पर्याय है, और क्षणिक उपादान में फिर दो भेद, एक पूर्ववर्ती पर्याय कि जिसका व्यय होकर ये पर्याय का उत्पाद हुआ, और ये तत्समय की योग्यता। तो जो तत्समय की योग्यता है उस तो वही असली कारण, असली कारण यानी कार्य उस जिस समय हुआ उसी समय क्यों हुआ, तो वो योग्यता ही उसका पूरा पूरा कंट्रोलर है, उसका नियामक कहते हैं। ये तो हुए उपादान के लिए। अब निमित्त के भी हमने दो दो प्रकार के अलग अलग भेद देखे। हाँ बोलिए। हाँ प्रवाह क्रम उत्तर भी नहीं लेना, पूर्व को लेना। हाँ, और उत्तर पर्याय है वो हुआ कार्य जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। एक तो पर्याय की, पर्याय कौन सी पर्याय, उस समय की पर्याय, कल हमने देखा था 14 नंबर की पर्याय, ये हुई उस समय की पर्याय, यानी उस समय नहीं विवक्षित पर्याय, उस समय आप अगर नहीं लिखेंगे विवक्षित पर्याय यानी पर्टिकुलर पर्याय, उस समय की पर्याय ने जिस पर्याय की हम चर्चा कर रहे हैं वह पर्याय, हाँ वो कार्य हुआ यानी पर्टिकुलर कार्य। अब पर्टिकुलर पर्याय की उसी समय होने रूप योग्यता, यह पर्याय उसी समय होनी थी ऐसी योग्यता द्रव्य में है। हम कहते ना होनहार है, भवितव्य है, भवितव्य यानी होने योग्य, यही पर्याय अभी होनी थी, दूसरी और कोई पर्याय न हो और यही हो ऐसी वो द्रव्य में उस पर्याय में ही योग्यता पड़ी। तीन काल की सारी जो अनादि अनंत पर्याय है प्रत्येक द्रव्य की, वो एक एक पर्याय अपने अपने जगह ही हो, वही हो अन्य न हो, दोनों तरफ से उसको बराबर कंफर्म करना, वही हो और अन्य न हो, ऐसी तीनों काल की पर्याय निश्चित है अपने अपने समय पर होगी और जो होनी है वही होगी, ऐसी योग्यता उसी पर्याय में है, तो इसीलिए उस समय वैसी ही पर्याय हुई, वैसा ही कार्य हुआ। किसी के परिणाम अन्य जीव के देखकर हमके हमें लगता है ये कैसा ये जीव है, कैसे परिणाम हो रहे, तो हम वो परिणाम देख देख कर दुखी होते या स्वयं कसाई होते, तो वहां क्या समझना, ये पर्याय की ऐसी ही होने की योग्यता है उस द्रव्य की। भगवान तो सारे ही द्रव्यों के तीनों काल के पर्याय देखते, तो हमारे तो ख्याल में नहीं है, परंतु उनके तो ख्याल में है ना कि कौन से जीव के अभी सातवें नरक योग के परिणाम चल रहे, तो उनको कितना दुख होता होगा, होता है ना। संजीव भगवान को सारे कट्टर खाने दिख रहे हैं, तो उनको दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा, हाँ करुणा होता है, तो करुणा क्या है हम स्वयं सोचेंगे, हम स्वयं उसका निर्णय करना चाहिए कि भगवान जो है जुड़े हुए तो हम भी नहीं है, परंतु तो मान रहे ना, और वो परों का यानी उसका बिगाड़ने का या सुधारने का भाव भी कर रहे, क्योंकि राग द्वेष है, और भगवान कैसे है राग द्वेष रहित है, कर्तापना तो है ही नहीं, राग द्वेष भी नहीं है, वीतरागी है, में दया है करुणा है, वो जो करुणा जैसे कहते हैं वो उपचार है, क्योंकि उनके द्वारा मोक्ष का मार्ग मिलता है, तो हम क्या कहते हैं, हे भगवान आप करुणामयी हो, करुणा की मूर्ति हो। ये वाली करुणा नहीं, ये परदया वाली नहीं। कि भगवान को भी दयावान कहते, वो दया कौन सी जो हमें जो दूसरों को भिखारी को देख के वो पैसा देने की बुद्धि, वो दया नहीं उनके पास। ये दया वगैरह करुणा ये सब निकल चुके उनमें, निर्दोष हुए ना। कल हमने देखा था रत्नगर शौकाचार में, राग द्वेष कुछ है ही नहीं, अभी कोई इच्छा नहीं, किसी का भला करो बुरा करो कुछ नहीं। तो इतने अनंतानंद पर्याय देख कर भी उन्हें दुख नहीं होता, क्योंकि वो उनकी सारी तीनों काल की पर्याय देख रही है। यदि वो सातवें नरक वाले के परिणाम देखकर अगर दुख हो, तो कुछ काल बाद वही जीव अगर सिद्ध होने वाला है तो वो भी उनके ज्ञान में आ रहे हैं। तो वे जानते हैं ना कि अभी इस भव में तो ये इतना नीच है, अभी सातवें नरक जाएगा, वहां से निकलेगा हिंस्र पशु होगा, फिर वहां से और सातवें नरक में जाएगा, फिर और ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, कालांतर में वो वहां से बाहर निकलेगा, तो समय दर्शन करेगा, कुछ भव में मुक्त चला जाएगा। तो कौन सी पर्याय की तरफ देखना, भगवान को किस पर्याय की तरफ देखना पड़ेगा? वो तो सभी पर्याय देखेंगे, वो तो ये मैं इसको जानू और इसको नहीं जानू, क्योंकि ये बहुत बुरी पर्याय है, ऐसा है ही नहीं वहां, सब जानेंगे। हम इसको नहीं जानना, इसको जानना कहे, हम हमारे जो बुद्धि है ना, अरे वो झोपड़पट्टी ये बाजू है, उधर महल दिख रहा है, इधर को नहीं देखे, उधर को देखे, क्यों? हम इस ज्ञान का निषेध कर रहे है ना। हमें कुछ विशिष्ट चीज जानने में रुचि है, और कुछ विशिष्ट चीज ना, नहीं नहीं अपने ज्ञान में नहीं आए तो अच्छा है। किसका निषेध कर रहे हैं? पर वस्तु का तो राग द्वेष है उसके प्रति, और उसके प्रति राग द्वेष है तो उसको जानने का भी हम निषेध कर देते। तो भगवान को तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, सारा लोकालोक उनके ज्ञान में आ रहा है, फिर भी राग की एक कणिका भी वहां नहीं है। पूर्ण वितराग हुए बिना सर्वज्ञता आती ही नहीं है, ऐसा ही वस्तु स्वरूप है। बारहवें गुणस्थान में जीव पूर्ण वितरागी हो जाता, कोई कथा अभी बाकी नहीं, बात मोह का पूर्ण नाश हो गया, और अंतर्मूर्त ऐसी स्टेज में रहते हैं तो फिर ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय तीनों का नाश हो जाता और फिर केवल ज्ञान हो जाता है। यानी पहले वितराग हुआ और पश्चात सर्वज्ञ हुआ। पहले सर्वज्ञ होता तो क्या होता, रागी द्वेषी अवस्था में अपने जैसे किसी को सर्वज्ञ तो प्राप्त हुआ तो क्या होगा? ऐसा तो राग द्वेष, हाँ ये ऐसा है क्या, इसने मुझे ऐसा किया था, चार भव किया पहले इसने मुझे मारा था, तो कैसे परिणाम होगा? तो उसका बदला लेने के होगी ना परिणाम। तो ऐसा स्वरूप है वितरागी का। देखो तो हमने वितरागी हो ही नहीं सकता और सर्वज्ञ ऐसे होने का प्रसंग ही नहीं बनता, क्योंकि ऐसा नैसर्गिक निसर्ग में ऐसी रचना नहीं, वस्तु व्यवस्था में ऐसा नहीं है कि कोई पहले सर्वज्ञ हो जाए। अन्य मती जो कहते हैं हमारे भगवान सर्वज्ञ, सर्वज्ञ फिर आंख खोल कर क्यों देख रही दुनिया को? सर्वज्ञ है उसको आंखों से देखने की जरूरत है क्यों? अति इंद्रिय है तो इंद्रियों का वहां कोई कारण ही नहीं है, इंद्रियों के द्वारा व्यापार ही नहीं हो रहा, ये आंख से नहीं देख रहे, आंख से किसी को स्पर्श करके देखने की जरूरत नहीं उनको, वो तो आत्मा से ही प्रत्यक्ष उनको ज्ञान है सारे के सारे। यानी हमारा ज्ञान इतना अल्प है कि यहाँ इंद्रियों का निमित्त है, इंद्रिया उसको ज्ञान नहीं कराते। हम भी अभी जो जान रहे हैं वो आत्मा स्वयं अपने कारण से जान रहे, परंतु यहाँ इंद्रियों की उपस्थिति है और व्यवहार से हम कहेंगे उसके अवलंबन से इसका कार्य चल भी रहा है। ख्याल आता है ना, इंद्रिया नहीं जान रही है, ज्ञान तो हम खुद रहे, परंतु यहाँ इंद्रियों की उपस्थिति है उसका निमित्तपना बनता है, परंतु केवल ज्ञान में। यानी हमें तो इंद्रिया की भी निमित्त है, प्रकाश की भी, प्रकाश का भी निमित्त है, क्योंकि अंधेरा है आप पुस्तक पढ़ो कहेंगे तो नहीं पढ़ सकेंगे, तो ये ज्ञान में जो निमित्तता पड़ती है इसलिए उसको पराधीन कहा। और केवल ज्ञान में ऐसी कोई पराधीनता नहीं है, वो तीनों काल तीनों लोक के सारे यानी अलोक सहित लोक के सारे ही द्रव्यों के एक एक पर्याय, उसके सारे अविभाग प्रतीत सारे को स्पष्ट जानते हैं, प्रत्यक्ष यानी आत्म प्रदेशों द्वारा जानते हैं, उन्हें कोई प्रकाश होगा तो जानेंगे, ऐसी कोई पराधीनता नहीं। तो ये हमने तो ये उपादान के भेद देखे, फिर निमित्त के भेद देखेंगे। याद है निमित्त के भेद? हाँ बोलिए। हाँ क्या? ख से ऊपर तीन लाइन। हाँ फिर कर पाएंगे। देखो जो अनंतरपुर वो ये है ना, देखो क्या कहते हैं, ऊपर जो हमने देखा था उसके भी ऊपर की दो लाइन उसी को फिर नीचे स्पष्ट किया है, उसको वहां से पढ़ेंगे। 230 जो श्लोक लिखा है उसके नीचे वाली लाइन मिला सबको। तो इस श्लोक में क्या बताया कि अनंतर पूर्व परिणाम यानी पूर्व की पर्याय, ये जिसको हमने 13 नंबर की पर्याय कही, उससे युक्त द्रव्य यानी पूरा द्रव्य लिया, अकेले पर्याय नहीं परंतु 13वीं पर्याय वाला द्रव्य ऐसा लेना, कारण रूप से परिणमित होता है यानी वो कारण है, और अनंतर उत्तर परिणाम से युक्त वही द्रव्य यानी 14वीं पर्याय वाला वही द्रव्य, 13वीं पर्याय वाला द्रव्य कारण और 14वीं पर्याय वाला द्रव्य कार्य, ऐसे नियम से वही द्रव्य नियम से कार्य होता है, ये उसका कार्य, कारण और कार्य दो पर्याय में लगाया यानी एक पर्याय का व्यय होता है और एक पर्याय का उत्पाद होता है, एक ही समय में एक का व्यय और अगली वाली का उत्पाद, तो ये जो व्यय रूप कारण और ये उत्पाद रूप कारण का, तो उसी को क्या स्पष्ट किया है नीचे जो अभी आपने जो पूछा हो, जो अनंत पूर्व पर्याय विशिष्ट द्रव्य है, अभी युक्त कहो या विशिष्ट कहो एक ही बात है, नहीं नहीं वो पर्टिकुलर अर्थ में नहीं, विशिष्ट है उसके सहित द्रव्य, नहीं व्यय और उत्पाद एक समय में होते परंतु वो पर्याय कौन सी है जिसका व्यय हुआ, पूर्व की पर्याय, 13वीं का व्यय और 14वीं का उत्पाद एक ही समय में, नहीं तो ऐसा मानने पड़ेगा कि इस समय वो 13वीं का व्यय हुआ फिर एक समय तक कुछ नहीं था फिर बाद में इसका उत्पाद हुआ, ऐसा नहीं है। हाँ नहीं 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 उसी समय, अभी पंचाध्याय में इसी को तो हम पढ़े थे, देखो अभी 13वें नंबर की पर्याय है ना, 1 सेकंड 8:01 पर ये पर्याय है, अभी हम समय के बदले में सेकंड नहीं, 8:02 समय में कौन सी पर्याय है, 14वीं नंबर की है, के बीच में एक गैप हो गया, कोई है ही नहीं, ऐसा होगा क्या द्रव्य में, पहले समय में 13वीं पर्याय है समझो, 13वें समय में 13वीं पर्याय है और 14वें समय में क्या है, 14वीं है बराबर, 13वें में 13वीं है 14वें में 14वीं है, तो जब 14वीं है तब 13वीं का क्या हुआ, तो उसी समय हुआ ना, पहले तो है थी, दूसरे समय 13वीं नहीं है 14वीं है, पहले 13वें समय में क्या है, 13वीं है, इसका उत्पाद व्यय कब हुआ, हाँ तो 14वीं आई तो तभी तो व्यय हुआ ना, पहले तो उत्पाद था उसका, चौदहवीं का उत्पाद हुआ और 13वीं का व्यय हुआ, देखो पहले तो ये थी अब किसी समय ऐसा हुआ, पूर्व की व्यय और अगली उत्पाद, यदि बीच में गैप मानेंगे हम तो पर्याय रहित द्रव्य मानना पड़ेगा तब एक समय के लिए, हिंदू दिन ख्याल में आता है ये बहुत बारी भूल है, देखो यानी पंचाध्याय में हमने इसको पढ़ा भी था, देखो फिर से, हाँ आप समाया ने क्या है, देखो अभी प्रदेशों के ऊपर हमने घटाया था, ये તમને એ પ્રદેશ, એક પ્રદેશ, દો પ્રદેશ, તીન પ્રદેશ, ચાર પ્રદેશ, ચારે ફેર હોય છે એક સાથે. અબ યે જો પહેલા પ્રદેશ હૈ ઉસકે ઉપર હમ નજર કરતે, ફિર ઉસકે બાદ કૌન સા હૈ, દૂસરા હૈ, દૂસરા પ્રદેશ હૈ, તો ઇસકે ઇસકે ઓર દેખ રહે હૈ, તબ યે હૈ ક્યા ઉસમે, તો હમ કહેંગે ઇસકા યે હૈ યે. અબ યે ઇસી કૌન પર્યાય કહેંગે, यहाँ एक नंबर है, दो नंबर ऐसे समझो, ये 13 नंबर की पर्याय है ना. अगले समय में कौन सी है, ये 13 भी है. अगले समय में कौन सी है, अगला यहाँ पर है, ये 14वां है. तो 13वीं का क्या हुआ, तब कब हुआ? हाँ, तो यही समय, एक समय की जिसका दूसरा, ये तो आपको समझाने के लिए इसी लाइन ड्रॉप की. अगर उसके 14वें समय का ऐसा नहीं कि यहाँ उत्पाद हुआ और यहाँ व्यय हुआ, ऐसा नहीं होता. व्यय पूर्व पर्याय का और उत्पाद अग्नि पर्याय का, तीन है वैसे, और ध्रुवता भी कायम है. एक ही समय में उत्पाद भी है, व्यय भी है और ध्रुवता भी है. परंतु उत्पाद किसका, अगले अगले पर्याय का, और व्यय किसका, पूर्व पूर्व पर्याय का. जिसका उत्पाद है उसी का वे उसी समय में नहीं है, उसी का वे अगले समय में. हिंदू बहन इसको ख्याल में लेना बराबर. अभी समझ में आया क्या? नहीं, क्योंकि हमें क्या लगता है, अरे उत्पन्न हुई जैसे सूरज अभी उगा और फिर वो अस्त हुआ, ऐसा नहीं उसका वे होता. बस वो है अगले समय में नहीं है, ऐसा ही. एक ही होता है. कौन सा? एक उत्पाद वाले कार्य एक समय में एक ही हुआ, परंतु अभी इस समय पूर्व पर्याय है ही नहीं है, वो अभाव रूप कार्य है. वहां इसलिए 14वीं के समय 13वीं का अभाव है, यानी वो है ही नहीं है, वो उत्पन्न ही नहीं हुई है, वो अभी रहेगी भी नहीं है. इसको रहना मानेंगे, यहाँ है और बाद में वह हुआ ऐसा मानेंगे, तो इस समय दो कार्य, यानी दो पर्याय माननी पड़ेगी. 14वें पर्याय का उत्पन्न हुआ या उस समय 13वीं पर्याय रही नहीं. क्यों नहीं रही? क्योंकि इसका काल ही एक समय का था, एक समय में थी, बस दूसरे समय में हम क्या कहेंगे, वो है ही नहीं. हाँ हुआ, बहुत हो ही रहे ना, उत्पाद भी है, व्यय भी है और ध्रुवता भी है. ऐसा नहीं कि ये पूरा ही मिट गया, यानी ये द्रव्य ही मिट गया और कुछ नया द्रव्य ही उत्पन्न हुआ, ऐसा नहीं है. वो उसकी जो द्रव्य रूप से तो सब कायम है. एक समय में अनंत अनंत द्रव्यों के उत्पाद भी हो रहे, व्यय भी हो रहे, द्रव्यों के पर्यायों के. और हम जीव द्रव्य है तो हमारे में अनंत गुण है, और अपने हर समय एक एक पर्याय, समय जो हमारे ज्ञान में भी नहीं आता, इतनी सूक्ष्म है. तो एक एक समय में पूर्व पूर्व पर्याय का व्यय और उत्तर उत्तर पर्याय का उत्पाद चलता रहता है, हर समय हर समय हर समय हर समय, जिसका हमें अभी कोई एहसास ही नहीं हो रहा. जब शास्त्र में से सीखते तब पता चलता है कि इतने सारे कार्य एक समय में हो, तो उसके लिए हमें कितनी इच्छा करनी पड़ती है. तो हम आज तक क्या सोचते हैं, हम इच्छा करेंगे तो ही कुछ कार्य होगा, नहीं तो कार्य पड़े रहेंगे. जब हम हाथ पैर नहीं हिलाते तब तक हमारे घर के कोई कार्य होते नहीं है. हम इच्छा सुबह से मरते हैं तो सारे कार्य निपटते हैं, नहीं तो कोई नहीं करता, ऐसा मानते कि नहीं मानते? और फिर गुस्सा भी आता है बहुत. क्यों? मैं मेरी बात करें औरों की, क्यों? देखो ये जो आपने ये जो दो लाइन है, जो अनंतर पूर्व पर्याय विशिष्ट द्रव्य है, यानी क्या, अनंतर पर पूर्व पर्याय से युक्त जो द्रव्य है, यहाँ विशिष्ट अर्थ होता है युक्त, उसकी उपादान संज्ञा है, उसको उपादान कहते हैं. और जो अनंतर उत्तर पर्याय विशिष्ट द्रव्य है, यानी जो अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगली पर्याय युक्त जो द्रव्य है, उसकी कार्य संज्ञा है। मैंने क्या कहा? नाम, नाम। देखो ये हमने जो 13वीं पर्याय को कारण कहा और 14वीं पर्याय को कार्य कहा, तो ये कारण है, ये कौन सा कारण है? निमित्त कारण है क्या? उपादान कारण। तो उपादान कारण के भी तीन भेद है, उसमें ये कौन सा कारण है? क्षण क्षणिक उपादान वाला। तो क्षणिक उपादान के भी दो भेद है, तो क्षणिक उपादान में ये कौन सा वाला कार्य है? अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादान, इतना लंबा जिसका नाम है वो उपादान कारण वाला है। और ये जो 14वीं नंबर की पर्याय कार्य है, इस कार्य को ही हम उपादेय भी कहते हैं। अब जो क्षणिक उपादान का दूसरा भेद है वो इसी पर घटित किया कि 14वीं समय की पर्याय जो है ना वो उसी समय हो, ऐसी योग्यता यहाँ पर। तो ये जो पर्याय प्रकृति वो हुआ कार्य, और जो योग्यता है वो हुआ कारण। पर्याय कार्य कारण एक ही समय पर घटाया। जो पर्याय प्रकृति वो तो कार्य हुआ, और उसमें जो योग्यता थी वो हुआ कारण। पहला नंबर क्यों आया? हमारे में योग्यता थी इसलिए आया, है ना? फेल क्यों हुआ? उसकी वैसी योग्यता थी तो फेल हुआ, तो उसी पर हम घटाते। वैसे यहाँ तो एक एक समय की बात करेंगे। तो अब जो हमने ये उपादान के तीन भेद देखे, एक तो त्रिकाली उपादान जो द्रव्य या गुण है, क्षणिक उपादान के दो भेद, एक पूर्व पर्याय को लिया, इसको कहते हैं अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादान का, और ये जो अनंतर उत्तर पर्याय वाला है तो तत्समय की योग्यता रूप जो क्षणिक उपादान का। ऐसे उपादान के तीन भेद देखिए। इसमें कुछ किसी को डिफिकल्टी है? हाँ, ये 14वें नंबर पर ये क्षणिक उपादान भी इसी एक समय में घटाते हैं। यहाँ 13वें का व्यय और 14वें की उत्पत्ति है, तो इसको 13वें का यहाँ व्यय वो व्यय को कारण कहा। एक ही क्षण में 13वें का व्यय हुआ, 14वें की उत्पत्ति हुई। तो 13वें की तरफ देखेंगे तो हम कहेंगे 13वें का व्यय यह कारण हुआ और 14वें की उत्पत्ति यह कार्य हुआ। अब 14वें की तरफ से हमको देखना है तो 14वें पर्याय उसी समय हो, ऐसी उसमें योग्यता है, तो उस पर्याय की योग्यता पर हमने दृष्टि की। एक ही समय में ये दोनों ही बातें ना, इसका व्यय भी हुआ है और इसका उत्पाद भी हुआ है, तो उत्पाद हुआ है वो कार्य और व्यय हुआ है वो कारण कहा? अनंतर पूर्व तो पहली वाली पर्याय, तत्समय ने उसी 14वीं पर्याय हुई, 14वीं पर्याय हुई वो कार्य हुआ, तो उसी पर्याय में उसकी योग्यता भी है। तो हमने 80 से नहीं, इसको तो नास्ती से कहना पड़ेगा कि ये पर्याय अभी नहीं रही, उसका व्यय हुआ, तो हम कहते व्यय रूप कारण क्यों, अभाव रूप कारण क्यों? अभाव की तरफ हमने नहीं देखा, तो स्वयं नष्ट हो गई वो क्या कारण होगा? इसलिए हमको कहाँ देखना रहा? तत्समय की योग्यता। तो कार्य उसी समय और वही होगा, ये कौन निश्चित करेगा? योग्यता। इसलिए योग्यता के ऊपर हम ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी उसी को नियामक कारण मानते हैं। अब निमित्त के भी हमने भेद देखे थे, नियामक यानी कंट्रोलर, उसका उसी समय हो वो कौन निश्चित करेगा? निश्चित करने वाला वो नियामक। अब निमित्त के भेद कल देखे थे हमने, ये चार भेद है कि क्या है? एक प्रकार का भेद है जिसमें उदासीन और प्रेरक के, दूसरे प्रकार से उसके भेद करेंगे तो अंतरंग और बहिरंग। ये उदासीन वाला अंतरंग होता है, ऐसा उसके साथ कोई संबंध नहीं है, वो अलग अलग उसके वर्गीकरण है। तो देखो हमने यहाँ तक हम आए थे, मेरे में तो पेज नंबर 5 है, किसी में 8 या 9 है पेज, 9 पेज। हाँ देखो हमने ये कल पढ़ा था कि क्षणिक उपादान के नाम लंबे होने के कारण उन्हें निम्नांकित यानी नीचे लिखे हुए संक्षिप्त नामों से शॉर्ट में अभिहित किया जाता है, यानी उसको फिर बताया जाता है, संबोधित कराया जाता है, प्रसंग दिया जाता है उसका। एक है अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय और दूसरा नाम है तत्समय की योग्यता। मेरे में लिखा है, आप में नहीं लिखा, क्या क्या लिखा है? अच्छा, मेरे इसमें लिखा है। अब उसके आगे जो चार्क है, देखो चार्क में सबसे ऊपर लिखा है उपादान कारक। ये पुस्तक में भी चार्क है ना, उसके दो भेद है, विकारी उपादान और क्षणिक उपादान। और क्षणिक उपादान के फिर दो भेद है, अनंत पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। यहाँ भी खाली क्षण, यहाँ बराबर लिखा पूरा, हाँ, अनंत पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, और जो दूसरा है वो तत्समय की योगी। ये हमने जिसको पढ़ाया उसी को फिर दोहराया चार के रूप में। क्षणिक उपादान कारण को समर्थ उपादान कारण भी कहते हैं। देखो त्रिकाली उपादान हमने देखा था कि द्रव्य तो अनादि से पड़ा है, कार्य क्यों नहीं हुआ, तो कहते ये समर्थ कारण ही है। समर्थ है नहीं, एबल, अंग्रेजी में कहते हैं लायक, हम कहते हैं हम अपना कार्य करने को समर्थ है, ऐसा कहते ना, तो समर्थ है ना, कैपेबल, एबल। तो क्षणिक उपादान कारण को समर्थ उपादान कारण भी कहते हैं, क्योंकि त्रिकाली उपादान कारण तो सदा विद्यमान रहता है, क्योंकि द्रव्य कब नहीं होगा, अनादि अनंत हमेशा विद्यमान होगा। तो सम्यक दर्शन की पर्याय करनी है या किसी को प्रकट हो गई तो अभी क्यों हुई, द्रव्य तो अनादि से ही था, तो कहते वो समर्थ उपादान नहीं था, उसी द्रव्य में होगी ये निश्चित है। जीव द्रव्य में ही सम्यक दर्शन होगा, उद्गल में धर्म अधर्म में नहीं होगा। इसलिए हमने पहले जीव को बताया त्रिकाली उपादान है, तो उपादान है तो कार्य क्यों नहीं हुआ, तो वो समर्थ उपादान है। तो समर्थ उपादान कौन है, एक क्षणवर्ती जो है ना, क्षणिक उपादान। तो त्रिकाली उपादान कारण तो सदा विद्यमान रहता है, यदि उसे ही पूर्ण समर्थ कारण मान लिया जाए, यानी उसी के कारण हमेशा, यानी उसी को कंट्रोलर माना जाए, उसी को समर्थ कारण, समर्थ कहो या नियामक कहो, तो विवक्षित कार्य की सदा उत्पत्ति होते रहने का प्रसंग आएगा। तो हर समय समय दर्शन ही होना चाहिए थे अनादि, परंतु ऐसा तो है ही नहीं है, तो अन्य भी कोई कारण होना चाहिए। तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय, देखो जिसे हमें 13वीं पर्याय का व्यय है ना, पूर्व पर्याय का व्यय, एवं उस समय उस पर्याय के उत्पन्न होने की योग्यता, यानी 14वें नंबर पर क्या क्या कारण, कौन कौन से कारण है, एवं और 14वीं पर्याय हुई ये कार्य हुआ। अभी ये त्रिकाली उपादान तो अनादि से ही था, हम उसकी ओर नहीं देखेंगे, इस समय कार्य हुआ 14वीं पर्याय का उत्पन्न ये कार्य है ना, तो अभी उसी एक ही समय की ओर हमें देखेंगे। तो इस समय क्या हुआ, उसकी ओर भी नहीं देखना है, इसी समय में 13वीं का व्यय हुआ, ये 13वीं का व्यय हुआ इसी समय, और इसी समय 14वीं की योग्यता थी, 14वीं पर्याय हुई, वह तो कार्य हुआ, वो कार्य का कारण कुछ अन्य होगा ना, तो 13वीं का व्यय हुआ और उसी समय 14वीं की उत्पन्न होने की योग्यता। तो इसलिए हमने अकेले इस एक समय की ओर देखा, उस समय में क्या क्या है, 13वीं का व्यय यह एक कारण है, और 14वीं की योग्यता यह भी कारण है। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय एवं यानी तथा या और, उस समय उस पर्याय के उत्पन्न होने की योग्यता ही अकेली लगाया, अन्य कोई नहीं है, यही समर्थ उपादान कारण है। हमने देखा था ना, जो व्यय और उत्पाद एक ही समय में हो रहा है, वो एक मेक से अभिन्न है, 13वीं का व्यय और 14वीं का उत्पाद, ये दो अलग अलग समयों में नहीं है, एक ही समय में। तो 13वीं का व्यय और 14वीं की योग्यता ये हुआ कारण, और 14वीं पर्याय हुई ये हुआ कारण, क्योंकि द्रव्य तो अनादि से था, तो अभी क्यों हुई वो पर्याय, 14वें नंबर की पर्याय पहले नंबर पर क्यों नहीं हुई। तो कहते कि वहां उसकी योग्यता भी नहीं थी, और वहां 13वीं का वैरूप कारण भी नहीं था, तो तो जब उसके पहले वाले पर्याय का यहाँ व्यय होगा और यही पर्याय की योग्यता होगी तब ये कार्य बने। हर पर्याय में ऐसा लगता है, हम एक विशिष्ट पर्याय की बात करते हैं, जिनके बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती और जिनके होने पर नियम से कार्य की उत्पन्न होती। ये हुई डेफिनेशन किसकी, कि समर्थ उपादान कारण किसे कहते हैं। यदि हम यहाँ प्रश्न लिखेंगे कि समर्थ उपादान कारण किसे कहते हैं, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, उसकी व्याख्या परिभाषा क्या होगी, कि जिनके बिना यानी जिन समर्थ उपादान कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती और जिनके होने पर नियम से कार्य की उत्पत्ति होती। दोनों ओर से उसको कंफर्म किया। ये जो स्टाइल है ना कि ये सफेद है ये काला नहीं है, दोनों ओर से इसको, ये चौक है ये पाटी नहीं है लेख नहीं है, तो दोनों ओर से इसको कंफर्म करते। ऐसी जिनागम की पद्धति है। क्या कहते हैं कि जिनके बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, कि जिसके सिवा कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, परंतु जिनके होने पर कार्य की उत्पत्ति होगी ऐसी कोई गारंटी है, तो हाँ कहते कि जिनके होने पर नियम से कार्य की उत्पत्ति होती है उसे समर्थ उपादान कारण कहते हैं। अभी या आत्मा में जानने का गुण कब से है, त्रिकाल है, वो त्रिकाल उपादान है, त्रिकाली उपादान। अब इसी समय ये निमित्त की परिभाषा आपने क्यों जानी, तो उसका हाँ तो उसका समर्थ कारण क्या है, अज्ञान का नाश, पूर्व पर्याय है ना, पूर्व पर्याय जो उसको नहीं जानने रूप थी, अज्ञान का नाश हुआ यानी उसकी अज्ञान वाली पर्याय का व्यय हुआ और जानने रूप पर्याय का उत्पाद हुआ। पहले निमित्त की परिभाषा नहीं जानते थे तो पूर्व पर्याय में वो नहीं जानने का कार्य हुआ, अब इस समय क्या हुआ, वो नहीं जानने रूप पर्याय का व्यय हुआ और जानने रूप पर्याय का उत्पाद हुआ, तो समर्थ कारण कौन सा है, कि जो व्यय हुआ और अभी जो योग्यता। तो सबसे अंत में हम योग्यता पर आएंगे ना, तो अभी इसको जानने की योग्यता थी वो कारण और अभी जाना वो कार्य, क्योंकि ज्ञान गुण तो हमारे में आना दी से, अभी क्यों जाना, तो उस ज्ञान गुण में ऐसी योग्यता यानी उस पर्याय की योग्यता अभी प्रकट होने की थी तो ये अभी प्रकट हुई, तो इसको कहते हैं समर्थ उपादान। अब ये जो परिभाषा ना ये हम निमित्त पर घटाएंगे, घटती है क्या नहीं घटता इसको, क्योंकि निमित्त जो है आज तक हम कहते थे या मानते थे कि निमित्त से कार्य हो रहा है, कल हमने देखा था ना, आपने बोला उपादान से तो त्रिकाल ही उपादान है, त्रिकाल से पड़ा है तो निमित्त आया तभी तो कार्य हुआ ना, हम तो अनादि से थे, भगवान का समय दर्शन हुआ ना, तो हमारी दृष्टि कहाँ थी, निमित्त ऊपर। तो क्या निमित्त समर्थ उपादान कारण है, तो उसके हम ये घड़े के कार्य में देखेंगे, घड़ा रूप कार्य हुआ। यदि हम कुम्हार पर घटाएंगे तो जिसके बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, कुम्हार के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, परंतु कुम्हार होने पर क्या ये लागू होता है, आप मुझे बताना, क्या ऐसा नियम बता सकते हैं कि जिसके होने पर नियम से कार्य की उत्पत्ति होती है, जहां जहां कुम्हार होगा वहां वहां वो होता ही है। हाँ यानी इसलिए क्या यहाँ से क्या सिद्ध होता है कि निमित्त कारण ये समर्थ कारण है ही नहीं है। उपादान में भी हम दो करते हैं कि त्रिकाली और क्षणिक, तो यहाँ क्या हुआ, समर्थ उपादान कारण में ही लगाया, समर्थ निमित्त में समर्थ शब्द ही नहीं लगाया, निमित्त कारण को तो उपस्थिति है बस इतना ही बताया। तो जिस द्रव्य में कार्य होगा उसको हमने त्रिकाली उपादान कहा, परंतु त्रिकाली उपादान यानी वो द्रव्य है इसलिए उसका कार्य होगा ही हम जो चाहते है ऐसा नहीं, वो तो समर्थ उपादान कारण नहीं है। तो समर्थ उपादान कारण कौन है, तो उस समय की योग्यता। तो वो कहां से लानी, योग्यता कहां से लानी, भगवान के पास जाके मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हाँ भाई, हाँ, पुरुषार्थ से योग्यता उत्पन्न होगी, पुरुषार्थ तो स्वयं कार्य है। योग्यता कहाँ पड़ी है? हाँ, वो एक 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 पर्याय में अपनी अपनी योग्यता है, यानी द्रव्य में तो अनादि अनंत पर्याय पड़ी है ना, पर्यायों का समूह को हमने द्रव्य कहा, गुण पर्याय समूह, गुण पर्याय का समूह को द्रव्य कहा। गुण तो अनादि अनंत है ही, पर्याय भी एक एक समय एक एक समय एक एक समय एक एक समय करके अनादि अनंत पर्याय उस द्रव्य में है, पड़ी है, पड़ी है ने, उसके अकला अपना अपना योग्यता रूप धर्म है, और सारी पर्याय भगवान एक साथ जान भी रहे। यदि ऐसी योग्यता नहीं होती, विशिष्ट समय में विशिष्ट पर्याय होने की अगर योग्यता नहीं होती, और ये पर्याय अगर होने वाली भी नहीं होती, तो भगवान कैसे जाने? भगवान ने हमारी भविष्य की पर्याय जानी है कि नहीं जानी? हाँ वसुनी भाई, हमारी भविष्य की पर्याय भगवान ने जानी है कि? तीनों लोक का होता है, तीनों काल का होता है कि नहीं? हाँ, तो हम अभी हम स्टेज पर है, हमारे अनादि की पर्याय इतनी बीत चुकी और हम इस पर्याय पर है, और हमारी ये सारी अनंत काल की पर्याय, ये अनंत काल की पर्याय भगवान ने जानी की नहीं जानी? वो योग्यता रूप धर्म हमारे में ही पड़ा है। क्रमबद्ध पर्याय में हमने ये भी देखा था, उस योग्यता के समय में कौन सा निमित्त होगा वो भी निश्चित है, उस समय में पूर्व की कौन सी पर्याय का व्यय होगा वो भी निश्चित है, ये सारा ही निश्चित है। उसका समय कौन से समय में होगा, कौन सी पर्याय होगी, ये सारा ही निश्चित है। तो सब निश्चित जब है तो हमें किसकी चिंता करनी पड़ेगी? अभी चिंता क्या रही? चिंता से मुक्त हो गए नहीं? अभी उतरा नहीं इसकी चिंता है, अभी पर की चिंता मिल गई, अभी अपनी रह गई क्या? अभी चिंता का कुछ काम है क्या इसमें? अपनी सारी पर्याय निश्चित है, पर पदार्थ की भी सारी पर्याय निश्चित है ना? तो वो योग्यता तो लानी नहीं कहीं से, लाने से मिलने वाली नहीं है, बराबर। तो योग्यता अपने 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 में पड़ी है, पर की पर में पड़ी है। जो 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 योग्यता जिस समय है उस समय वैसे ही पर्याय होगी ही होगी, उसको इंद्र जिनेन्द्र और कोई भी टालने को समर्थ नहीं है। तो हम ये हमारा माथा कहाँ मार रहे हैं खाली पीली पर में, पर्याय की ओर देख देख कर दुखी भी हो रहे हैं, नए राग द्वेष भी कर रहे हैं। जब तक राग द्वेष होते रहेंगे वो तो निमित्त रूप से कर्म बंध भी चलता रहेगा, और हम तो उसी के निमित्त से ये सारा होता मानकर हमारे राग द्वेष होते ही रहेंगे। अब राग द्वेष नहीं हो इसका उपाय क्या है? हाँ, तो जो अपनी ये योग्यता रूप ये जो हमने तत्व निर्णय किया है उसको जानो और अपने में रम जाओ। पर्याय की ओर देख देख कर हमें जो राग द्वेष होते हैं, तो अभी जो अपना त्रिकाली स्वभाव है कायम रूप एक रूप जैसा रहने वाला, ये हम ज्ञान और दर्शन है सारे और गुणों से युक्त ऐसा हमारा जो स्वभाव है, पर्याय की तरफ देखना नहीं है। पर्याय तो है अपने में, वो कौन कौन सी पर्याय चल रही है इसकी तरफ झांकना नहीं। अभी मिथ्या तो है कि समय दर्शन है क्या है, जैसे हम बीज बोते हैं जमीन में तो हर एक घंटे के बाद ऐसे वो निकाल के देखते हैं क्या, तो उसमें से कब अंकुर होगा कब वृक्ष होगा, तो अंदर बीज बो दिया ना तो बस अब निश्चिंत हो जाओ उसमें से वृक्ष पैदा होने वाला ही है। वैसे जब हम त्रिकाली की अपनी दृष्टि करते हैं तो यथा योग्य जो सम्यक पर्याय वो परिणाम उसका चालू ही होगा, उसकी भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। परंतु उसके पहले वो उसका दृष्टिकोण करेगा कि जो ये सारा निर्णय करेगा उसकी ही दृष्टि अपनी ओर जाएगी, क्योंकि गलत मान्यता के बिना वो देखेगा किसको? ज्ञान अपना केंद्रित कहाँ करेगा? मान्यता गलत होगी तो उसका सारा ही वो गलत ही रास्ते पर है। इसलिए सबसे पहले में पहले हमने कर्मबद्ध पर्याय के समय में इसको बहुत बार दोहराया था कि ये जो सारा तत्व का निर्णय है वो महत्व का है, तत्व निर्णय करना यही पुरुषार्थ है। हमें लगता है अरे इसको छोड़ो उसको छोड़ो, ये अभी रात को खाना छोड़ दिया हमें, ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया हमें, बहुत पुरुषार्थ किया, वो कुछ पुरुषार्थ नहीं है, वो तो सदाचार है, वो तो पात्रता है, हमें भी गिनाया जाएगा है ना। ऐसे मूल गुण का वगैरह जो आया था, ऐसे मूल गुणधारी है जो मध्यम अंश मधु का त्याग करता है, पांच उदुम्बर फलों का त्याग करता है, ये तो बहुत ऑर्डिनरी सदाचार है जैनियों के। तो ये तो सम्य दर्शन के लिए सारा तत्व निर्णय ही कार्यकारी है और यही करने से उपयोग अंदर चला जाएगा। जब तक निमित्त से कार्य होता मानेगा तब तक वो उसका उपयोग पर को छोड़ेगा ही नहीं, तो कहीं ना कहीं पर में अटका है और उसके में उससे मेरा सुख दुख का नाता है, उससे मेरा कार्य होगा, उसके कारण अभी मैं रुका हूँ, अभी भगवान नहीं मिले, समोचरण में नहीं गया हूँ, इसलिए मेरा समय दर्शन रुक गया है। चलो यहाँ से मैं विदेह क्षेत्र में जन्म लूंगा, वहां समोचरण में चला जाऊंगा और वहां क्या सुनूंगा भगवान की वाणी और फिर मुझे समय दर्शन होगा, यानी निमित्त से कार्य होगा, ये मान्यता उसमें कायम रहती है। ऐसी मान्यता बहुत चलती है, हम भी बचपन में सुनते थे, नहीं अभी तो पुण्य करेंगे फिर समोचरण इसमें स्वर्ग में जाएंगे। देवलोक तो सभी जगह जा सकते है ना, देव होने के बाद स्वर्ग में से हम डायरेक्ट किसी भी तीर्थन करके समोसर में जाएंगे, इतने 20-20 तीर्थन करे तो उनके पास जाएंगे और सारा सुनेंगे। अकेले समोसरण में जाने की योग्यता नहीं, वहाँ वो स्वर्गों के देवों की वो असंख्या द्वीप समूह सब जगह वो घूम सकते, तो कहाँ घूमेंगे। अभी जिसके पास पैसा बहुत हो गया वो पहले समोसे के लिए जाता है कि स्विट्जरलैंड जाता है घूमने, तो स्वर्ग के वैभव मिलेंगे तो उसके वैभव छोड़कर वो सारा विदेह क्षेत्र में जाने वाला है, बातें बनाता। अभी तो घर छोड़कर स्वाध्याय में नहीं आता और स्वर्ग में जाने के बाद इतने संयोग मिलेंगे तो कहाँ जाएगा वो, नंदनवन में घूमेगा ना या कृत्रिम चैताले के दर्शन करेगा। रे जिसको अभी नहीं करना ना वो वादे बनाते आगे वाले समय। देखो यहाँ हमारे चल रहे ना समर्थ उपादान कारक, हाँ हाँ यूनिवर्सिटी पर्टिकुलर जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसकी डेफिनेशन फिर पढ़ेंगे। समर्थ उपादान कारण है ना, इसको कहेंगे हम, तो जिनके बिना यानी जिन कारणों के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती और जिनके होने पर यानी समर्थ कारण उपादान कारण होगा तो नियम से कार्य की उत्पत्ति होती है, उसको कहते हैं समर्थ उपादान कारण। यानी जब जब जहाँ जहाँ समर्थ उपादान कारण है वहाँ कार्य होगा ही होगा और जहाँ समर्थ उपादान कारण नहीं है वहाँ कार्य होगा ही नहीं है। और ये समर्थ उपादान कारण कौन है, एक क्षणवर्ती उस समय की पर्याय की जो योग्यता है क्षणिक उपादान, उसको समर्थ उपादान कारण कहा है ना, कि द्रव्य में तो वो पर्याय होने की योग्यता है, समय दर्शन रूपी कार्य होने की योग्यता तो हमारे द्रव्य में है, यानी वो द्रव्य में वो त्रिकालीय उपादान तो हमारा द्रव्य ही है, परंतु कब होगा कि जब जिस समय वो योग्यता है उस समय समय दर्शन होगा ही। तो हर एक पर्याय हमारी निश्चित है तो कहाँ देखना रहा, द्रव्य में योग्यता सारी पड़ी है तो पर्याय की वो देखना छोड़ दो, द्रव्य को भी कैसा देखना अभी सारी चर्चा आती है अन्य ग्रंथों में भी, अपना ये विषय अलग चल रहा है। तत्वार्थ श्लोक वार्तिक ये ग्रंथ का नाम, उसमें उपादान के दो भेद किए गए हैं, एक असमर्थ उपादान और दूसरा समर्थ उपादान। ये किसके भेद है, उपादान के, उपादान के दो भेद कौन से दीपाली, असमर्थ उपादान। उनमें जो समर्थ उपादान है वह अवश्य ही कार्य का जनक होता है, जनक यानी उत्पन्न करने वाला, कार्य को जन्म देने वाला, और वह अष्ट सहस्री के अभिप्राय अनुसार, अष्ट सहस्री भी ग्रंथ है तो अष्ट सहस्री के अभिप्राय अनुसार अव्यवहित पूर्व पर्याय युक्त द्रव्य रूप ही होता है। यानी समर्थ कारण ये 14वें नंबर की पर्याय उत्पन्न हुई, वो क्यों हुई, उसमें कारण कौन है, तो पूर्व पर्याय युक्त द्रव्य रूप 13वीं पर्याय वाला जो द्रव्य है वही 14वीं पर्याय का उत्पादक है, उसका जनक है। ये संस्कृत शब्द है ना, तो ऐसा में लगता है क्या क्या बातें बना रहे। अब हाँ निश्चित ना, हाँ अव्यवहित विदाउट अव्यवहित। नियम से ऐसा ही कितने लोग पूर्व भजन के वो नियम से पूर्व पर्याय से द्रव्य रूपी होता है। हमने जो अभी तक पढ़ा है पूर्व पर्याय से युक्त द्रव्य उत्तर पर्याय का जनक है, कारण है। 13वीं पर्याय वाला द्रव्य 14वीं पर्याय का कारण है, यही बताया है। संस्कृत शब्द है ना, तो हम डर गए। अभी हमें डरने की कोई बात नहीं, कोई भी कैसे भी शब्द आए इतने लंबे लंबे, हमें तो निश्चित किया ना। उपादान में दो भेद, एक त्रिकाली और एक क्षणिक। त्रिकाली है वो असमर्थ उपादान, क्षणवर्ती जो क्षणिक उपादान है वो समर्थ है, एबल है, उसी समय कार्य करने की उसमें शक्ति है। ये कौन सा है वो समर्थ उपादान? तो पूर्व पर्याय का व्यय और उसी पर्याय की योग्यता, एक ही समय में ये दोनों ही बातें, इसलिए उसको क्षणवर्ती कारण का क्षणिक उपादान। इस प्रकार इतने विवेचन से, विवेचन यानी स्पष्टीकरण, जो यहाँ खुलासा किया उसको कहते विवेचन, वर्णन हुआ। इस प्रकार इतने विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि समर्थ उपादान एक ही होता है और उससे उत्पन्न होने वाला कार्य वही होता है जिसका वह समर्थ उपादान है। एक ही वाक्य को उल्टा 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 बना, क्या कहते हैं कि समर्थ उपादान एक ही होगा। 14वें नंबर की पर्याय कार्य हुआ तो 14वें वाले की योग्यता, यह एक ही समय वाली बात है ना, वो एक ही उसका उपादान है, समर्थ उपादान। और उससे कौन सा कार्य उत्पन्न हुआ? 14वें नंबर के पर्याय यही कार्य उत्पन्न हुआ, यानी उससे 14वें की योग्यता वाला जो समर्थ उपादान कारण है उससे 12वें 13वें या 15वें पर्याय नहीं होगी। वो किसका समर्थ उपादान कारण है? 14वें पर्याय का ही समर्थ उपादान कारण है, तो उससे कार्य भी वही होगा जिसका वो कारण। ऐसा नहीं कि वो समर्थ उपादान कारण एक है और उससे कोई भी पॉसिबिलिटीज है अलग अलग, ऐसा नहीं है। 14वें की उत्पत्ति की योग्यता हो और कोई भी 2, 4, 5 या 10वीं 15वीं नंबर की पर्याय हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो 14वें की योग्यता वाला कारण है तो 14वें ही पर्याय उस समय उत्पन्न होगी, अन्य कोई भी पर्याय उत्पन्न नहीं होगी। तो हमारे द्रव्य में एक एक समय की पर्याय की योग्यता निश्चित पड़ी है तो अपने द्रव्य के पर्याय बदलेगी कि नहीं बदलेगी? इच्छा अनुसार या भगवान आएंगे तो बदले? ठीक है सर, तो क्या कहते हैं समर्थ, ये पहली लाइन का ही अंतिम, समर्थ उपादान एक ही होता है। एक समय की जो एक विशिष्ट पर्याय है उसके लिए समर्थ उपादान भी एक ही है और उससे उत्पन्न होने वाला कार्य वही होता है जिसका वह समर्थ उपादान होता है। वहां उस कार्य का जो भी निमित्त होता है, निमित्त भी होगा ही नहीं कि नहीं होगा, निमित्त होगा कि नहीं? अभी 14वीं पर्याय हुई उसमें निमित्त होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि हर समय की जो पर्याय है उसमें उपादान भी होता है और निमित्त भी होता है। निमित्त स्वयं पर्याय रूप नहीं परिणमता, परंतु निमित्त होता है, उसकी उपस्थिति है वहां। तो वहां उस कार्य का जो भी निमित्त होता है उसमें उपादान की क्रिया करने की शक्ति ही नहीं होती। देखो ये योग्यता किसमें पड़ी है, समझो। हमने देखा था ये द्रव्य है, अभी जिसकी हमने 14वीं नंबर की पर्याय देखी थी वो ए नाम का द्रव्य है, ये 14वीं पर्याय हुई है। उस समय उसमें निमित्त क्या है? तो कोई बी नाम की कुछ विशिष्ट, समझो उसकी भी कोई 100 नंबर की कोई पर्याय समझो है इसी बी में, और वो इसमें निमित्त है, बराबर। तो इस द्रव्य में, बी द्रव्य में, ये 14वीं नंबर की जो इस द्रव्य ए वाली जो पर्याय है उस रूप होने की योग्यता इसमें है क्या नहीं है? निमित्त में, इसमें तो अपनी 14वीं पर्याय रूप होने की योग्यता है, परंतु इसमें बी द्रव्य में बी की कोई भी पर्याय रूप होने की तो उसमें योग्यता है। अभी इस समय तो 14वीं पर्याय होने की योग्यता है बी द्रव्य में, परंतु बी द्रव्य में एक ही कोई भी 14 नंबर के पर्याय होने की योग्यता नहीं है। समझो ये पुद्गल द्रव्य और ये जीव द्रव्य, जीव द्रव्य में अपनी पर्याय होने की योग्यता है, परंतु जो यहाँ पुद्गल द्रव्य होगा या अन्य कोई भी निमित्त होगा उसमें इस जीव की पर्याय रूप होने की योग्यता है क्या नहीं है। तो क्या कहते हैं कि निमित्त में उपादान की पर्याय रूप होने की योग्यता नहीं है। पुस्तक में पढ़ सकते वहाँ उस कार्य का जो भी निमित्त होता है उसमें उपादान की क्रिया करने की शक्ति ही नहीं होती, योग्यता ही नहीं होती, उसमें ऐसा कोई भी एबिलिटी नहीं है कि ये जो अन्य द्रव्य है वो दूसरे द्रव्य की कोई भी पर्याय करे। इस द्रव्य की पर्याय करने का सामर्थ्य दूसरे किसी भी द्रव्य में नहीं, कोई अन्य द्रव्य में है ही। मात्र वह उपादान के अनुसार होने वाला कार्य का सूचक होने से उसका निमित्त कहलाता है। अब यहाँ जीव में सम्यक दर्शन हुआ विशिष्ट समय पर, वहाँ कर्म भी अनादि से अन्य अन्य पुद्गल रूप होते 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 यहाँ कर्म रूप हुआ, फिर यहाँ आया तो यहाँ भी उसका विशिष्ट उदय हुआ, और यहाँ भी यहाँ उदय उदय था तो भी यहाँ वो निकल गया या अभाव हुआ तो यहाँ कर्म नहीं रहा, यहाँ सम्यक दर्शन हुआ तो यहाँ मिथ्यात्मा नाम का जो कर्म था उसका उदय नहीं था। कर्म में जो अवस्था बनी उसके अपने कारण, कर्म में जीव के सम्यक दर्शन रूप होने की, सम्यक दर्शन रूप परिणति होने की उसमें कोई शक्ति ही नहीं है, क्योंकि ये तो पुद्गल द्रव्य है और ये सम्यक दर्शन तो जीव द्रव्य का कार्य है, तो पुद्गल द्रव्य में सम्यक दर्शन नामक पर्याय होने की कोई शक्ति ही नहीं है। बराबर अवसन जी, वही पुद्गल में ऐसी कोई शक्ति है कि वो सम्यक दर्शन रूप परिणमित हो, नहीं है ना। तो यही बताया यहाँ, क्या कहते वो कि कार्य का सूचक है। अब यहाँ हमने कर्म की तरफ देखा तो इतने काल में यहाँ कोई मिथ्या तो कर्म का उदय दिखा ही नहीं, तो व्हाट इज ये इंडिकेट क्या करता है, इंडिकेशन क्या करता है कि यहाँ सम्यक दर्शन होना चाहिए, तो इसका ये सूचक है, बताने वाला है। हम देखते हैं थर्मामीटर से, तो थर्मामीटर में क्या कार्य हुआ, तो उसका जो नली में है ना वो चल गया काटा ऊपर, उसका मर्क्यूरी, मर्क्यूरी है 98 पर था, ये 102 तक चल गया, 102 डिग्री। तो उस समय क्या था कि यहाँ बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ, तो थर्मामीटर ने इसको पैदा किया क्या, बुखार जो आया वो थर्मामीटर ने पैदा किया, तो क्या किया उसने, उसने बताया कितना टेम्परेचर है। हाँ वैसे ही कर्म की तरफ हम देखते हैं तो वो हमें पता चलता है कि यहाँ जीव का कौन सा भाव होगा, तो निमित्त को कहते वो सूचक है, कार्य को बताने वाला है। निमित्त की तरफ देखकर हम कार्य का अंदाज बता सकते हैं। अब यहाँ निमित्त में उदय कुगुरु कुशास्त्र है, मान्यता पड़ी है कि ये हमारे देव है, तो यहाँ सम्यक दर्शन का कार्य होगा कि नहीं होगा बेटा, देखिए निमित्त की तरफ देखकर हमको अंदाजा लगा सकते हैं कौन सा कार्य है। निमित्त ने कुछ नहीं किया, उदयवादी ने मिथ्या दर्शन उत्पन्न नहीं किया है, जीव ने स्वयं अपनी योग्यता से उत्पन्न किया, परंतु यहाँ निमित्त किसका दिख रहा है, उदयवादी का निमित्त दिख रहा है, तो वहां देखकर हमें ज्ञान होता है कि यहाँ सम्यक दर्शन तीन काल में भी नहीं हो सकता, वो बताने वाला है। और समझो यहाँ सच्चे देव गुरु शास्त्र हो गए तो यहाँ सम्यक दर्शन होगा क्या नहीं होगा, होगा ही, ऐसा कोई गारंटी है, यानी जीव में वहां योग्यता होगी तो जीव उस रूप परिणमेगा, तो यह देव सच्चे देव के हाथ में थे अपने हाथ में, हाँ तो हम अपने आत्मा की रुचि करेंगे तो योग्यता है ही हमारे में, अरे परंतु हमारी योग्यता नहीं हो ऐसे रोने वाले को कभी नहीं होता, ऐसे आता है। हाँ हाँ देखो मात्र उपादान, वह उपादान के अनुसार वह निमित्त होने वाला कार्य का सूचक होने से उसका निमित्त कहलाता है, और इसी आधार पर निमित्त के अनुसार कार्य होता है, ऐसा व्यवहार किया जाता है, ऐसा उपचार किया जाता है, होता नहीं है तो हम क्या कहेंगे, उपचार क्या कहेंगे? जीव ने स्वयं मिथ्या से किया तो हम आरोप किस पर डालेंगे, व्यवहार क्या होगा कि सुदेव आदि के कारण यहाँ मिथ्या तो पुष्ट हुआ, सुदेव के कारण। और समझे जीव ने सम्यक पुरुषार्थ किया, सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो मेरे गुरु के कारण मुझे यहाँ ज्ञान हुआ, मुझे उपदेश मिला, मुझे सम्यक दर्शन हुआ, ऐसा उपचार किया जाता है, ऐसा व्यवहार किया जाता है। निमित्त का ज्ञान कराया जाता है, उसका एग्जिस्टेंस प्रेजेंस बताया जाता है, उससे कार्य हुआ ऐसा कथन हो सकता है, पर वो कथन के पीछे सच्चा अभिप्राय क्या है कि निमित्त ने कार्य में कुछ नहीं किया, कार्य तो उस द्रव्य में ही हुआ, परंतु उस समय ये ऐसा निमित्त वहाँ उपस्थित था, तो जहाँ निमित्त ऐसा है तो वहाँ वो कार्य होता है, होगा। निमित्त देखते थे हम, कहते वहाँ अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ अभी समय दर्शन का कार्य नहीं हुआ, निमित्त है इसे कार्य होगा या ऐसा नहीं, परंतु जब जब कार्य होगा तो उसकी निमित्त की उपस्थिति रहेगी वहां, तो इसलिए निमित्त पर आरोप आता है। ये निमित्त व्यवहार, ये निमित्त और इसका जो उपादान है उसका ऐसा सुमेल रहता है, तो इसलिए निमित्त को इतना कथन किया है शास्त्र ने। निमित्त का हम ज्ञान कर सकते हैं और वो ज्ञान के द्वारा वहां कार्य का अनुमान किया जाता है, परंतु कार्य जो जो होता है वो उपादान में अपनी योग्यता से ही होता है, अन्य उसका कोई भी समर्थ कारण नहीं है। ध्यान में तो कोई नहीं करता, उसकी उपस्थिति होती है बस। देखो उक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि नियामक कारण त्रिकाली उपादान कारण नहीं अपितु क्षणिक उपादान कारण, अपितु ने परम यानी नियामक कंट्रोलर, कंट्रोलर कौन है? हमने तो पहले देखा था कि निमित्त कारण से नहीं होता परंतु उपादान से कार्य होता है, फिर उपादान तो पड़ा है क्यों नहीं होता, तो वो तो कार्य का नियामक नहीं है, कार्य को निश्चित करने वाला नहीं है, तो नियामक कौन है? क्षणिक उपादान, उस समय की योग्यता। निमित्त कारण को नियामक कारण मानने वालों को इस तथ्य की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। आज तक तो निमित्त की ओर से बोलने वाले जो है, उसका पक्ष लेने वाले जो है, उसी से कार्य होता है ऐसा मानने वाले जो है, वो क्या कहते, देखो तुम्हारा उपादान क्या कर रहा था, हम आए तो कार्य हुआ, अब तक निमित्त नहीं था तो कार्य भी नहीं हुआ, तो उनकी दृष्टि कहाँ पड़ी रहती है? हमेशा निमित्त पर। वो क्या सोचते है, जब तक निमित्त नहीं आएगा तो कार्य नहीं होगा, परंतु सच क्या है हकीकत, जब यहाँ विशिष्ट कार्य रूप होने की योग्यता होती है उस समय तो ये अनंत द्रव्य अपनी अपनी योग्यता से अपना अपना कार्य, अपने प्रत्येक में अपना अपना कार्य हो ही रहा है, तो जब यहाँ योग्यता होती है तो वहाँ अन्य किसी द्रव्य में उसके अनुकूल रूप होने का आरोप आ सके ऐसा कार्य उसमें भी अपने से होता ही है। जब यहाँ शिष्य की तैयारी है उपादान रूप परिणाम ने की, विशिष्ट कार्य रूप परिणाम ने की, समय दर्शन रूप, वहाँ निमित्त रूप से अन्य कहीं वो उपदेश भी मिल जाता है, किसी जीव को ऐसे उपदेश देने के भाव भी हो जाते हैं, उसने दिया इसलिए कार्य हुआ ऐसा नहीं, इतनी पराधीनता नहीं है, परंतु जहां जहां योग्यता होती है वहां वहां उचित निमित्त उसके अपने कारण से होते हैं। हम कहें कि चलो हम निमित्त बन जाएंगे इतने सारे द्रव्यों को, तो ऐसा नहीं होता, निमित्त बनाने से नहीं बन सकते। कोई कहेंगे, भगवान कहेंगे ना, चलो मैं निमित्त बन जाता हूँ, इतने जीवों को मैं समय दर्शन दे देता हूँ, हो सकेंगे निमित्त? हाँ मिलेगा, क्योंकि अभी भगवान आदिनाथ निमित्त थे कि नहीं समय दर्शन में? हाँ, जिसने किया उसके लिए, जिसने नहीं किया वो मारीच ने नहीं किया, उसके लिए निमित्त थे कि नहीं थे? निमित्त तभी कहते हैं जब कार्य होगा, उन्होंने समय दर्शन रूपी कार्य ही नहीं किया, वो कितने ही बड़े बलशाली तीर्थंकर हो जिनके उपदेश से अनेक जीव समय दर्शन प्राप्त किया, कोई मुनि हो गए, किन्होंने शाही समय दर्शन प्राप्त किया, परंतु इनको नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? ये योग्यता ही नहीं थी, तो योग्यता नहीं थी, कार्य भी नहीं हुआ, तो उसको निमित्त भी नहीं किया। तो अकेले भगवान है तो वो निमित्त होते सब में, ऐसा नहीं, जो स्वयं उस रूप परिणाम है उनके लिए निमित्त है कहलाते हैं। यानी निमित्त जो है वो उपचार है, वो स्वयं उस पर्याय रूप नहीं परिणमते, उनकी उपस्थिति होती है। यानी जिसकी योग्यता पर दृष्टि है उसको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मुझे निमित्त नहीं मिले तो मेरा काम अभी अधूरा रह जाएगा। ये मान्यता निमित्ताधीन दृष्टि है कि हमें निमित्ताधीन दृष्टि छुड़ानी, निमित्त को नहीं छुड़ाना है, न कोई छोड़ सकता है न कोई ला सकता है। ये मान्यता में ही सारा निर्णय करना है, मान्यता में लेना है उसको, सही मान्यता करनी है बस। जब इसकी जानकारी होती है तो मान्यता अपने आप सुधर जाती है। उसके लिए भी कुछ उठक बैठक करेंगे ऐसी कोई बात नहीं है। सही जानकारी हो गई तो गलत मान्यता छूट गई, सही मान्यता हो गई। निमित्त को नियामक कारण के रूप प्रस्तुत करते समय यह तर्क दिया गया था, उपादान तो सदा विद्यमान रहता है, यदि उसे ही नियामक या समर्थ कारण माना जाएगा तो कार्य के सदा ही उत्पन्न होते रहने का प्रसंग आएगा। पहले तो देखा था कि वो मिट्टी तो पड़ी है, क्यों नहीं कार्य हो रहा है, बड़े रूप कहते कुमार आएगा तब कार्य होगा। ऐसे निमित्त को मानने वालों ने उसको समर्थ कारण किसको कहा था, उपादान, क्योंकि त्रिकाली उपादान तो पड़ा है परंतु घड़े रूप कार्य नहीं हुआ, कुमार आया इसलिए हुआ ना। निमित्त की ओर देखने वाले की दृष्टि उस पर ही रहती निमित्त की ओर, तो उसने दलील क्या दी थी, त्रिकाली उपादान तो पता है फिर भी कार्य तभी होगा जब वो निमित्त आएगा। तो उक्त संदर्भ में उसके लिए क्या उत्तर है, उक्त संदर्भ में वस्तु स्थिति यह है, यानी एक्चुअल क्या फैक्ट है कि त्रिकाली उपादान कारण को ही उपादान कारण मानकर यह कहा गया था कि उपादान तो सदा ही रहता है। सदा रहने वाला उपादान कौन सा है, त्रिकाली उपादान, और क्षणिक उपादान अपने अपने समय पर रहेगा, जबकि क्षणिक उपादान भी तो उपादान है जो सदा उपस्थित नहीं रहता। अतः उपादान को समर्थ कारण मानने पर कार्य सदा होते रहने के प्रसंग उपस्थित होने का आरोप निराधार है। निमित्त की दृष्टि वालों ने यह आरोप लगाया था कि उपादान तो सदैव विद्यमान रहता है, परंतु वो यह भूल गया था कि त्रिकाली उपादान हमेशा रहेगा परंतु क्षणिक उपादान तो हमेशा रहेगा नहीं। जब कार्य होने वाला है जिस समय, उसी समय वो क्षणिक उपादान होगा, और उस समय सामने कुमार था तो एक क्षणिक उपादान पर दृष्टि थी नहीं, तो उसने कुमार को ही सच्चा कारण मान लिया। क्योंकि कार्य का नियामक कारण तो क्षणिक उपादान है, त्रिकाली उपादान नहीं। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि जब क्षणिक उपादान ही समर्थ उपादान है तो फिर त्रिकाली उपादान का क्या महत्व रहा। क्या प्रश्न पूछते, त्रिकाली उपादान बताए क्यों, अकेले क्षणिक उपादान बता देते। भाई बात ऐसी है कि उपादान तो निज शक्ति को कहते हैं, जैसा कि कहा गया है, जो अपनी उपादान क्या है, उस वस्तु की निज शक्ति, ये दोहे में लिखा है, उपादान निज शक्ति है, जीव को मूल स्वभाव है, निमित्त पर योग तई बनियो अनादि बनाओ, कि उपादान ये निज शक्ति है और वो जीव का निज स्वभाव है। अब यहाँ जीव की बात है, ये जीव को कहा, प्रत्येक द्रव्य का अपना स्वभाव है, पुद्गल में भी अपनी उसकी निज शक्ति है, वो पुद्गल का अपना स्वभाव है, हर एक द्रव्य पर घटा सकते हैं, और है निमित्त पर योग तई, और निमित्त क्या है, पर योग है, दूसरे का संयोग है, वो साथ है, बस इतना ही बताता है। अन्य जो चीज है वो साथ में है, इसको परयोग का, पर वस्तु का संयोग है वह। बनियो अनादि बनाओ, ऐसे ही अनादि से सहज बनाओ बनते आया है कि जहाँ जहाँ उपादान की शक्ति है वहाँ वहाँ अन्य कोई चीज निमित्त रूप से उपस्थित रहती है। बस शक्ति दो प्रकार की होती है, एक द्रव्य शक्ति और पर्याय शक्ति। उपादान को यहाँ क्या कहा, निज शक्ति। प्रत्येक द्रव्य में अपनी अपनी शक्ति है, वो दो प्रकार की, एक तो द्रव्य शक्ति और एक पर्याय शक्ति। इन दोनों शक्तियों का नाम ही उपादान है। अभी कहा ना ऊपर कि उपादान निज शक्ति को कहते हैं, तो ये निज शक्ति कैसी है, एक द्रव्य रूप और एक पर्याय रूप। अभी हमारे में द्रव्य रूप केवल ज्ञान की शक्ति है कि नहीं है? हाँ हाँ बेन है ना। तो जब प्रत्यय का केवल ज्ञान, तब तो उसको पर्याय शक्ति कहेंगे। अब द्रव्य रूप से तो सारी अनंत गुणों की पर्याय, जितनी जितनी पूर्ण शक्ति है उसकी, वो पड़ी है अंदर, वो द्रव्य शक्ति। जिस समय वो पर्याय प्रकट करेंगे, वो उसको पर्याय शक्ति कहेंगे। पर्याय, इन दोनों शक्तियों का नाम ही उपादान है। पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति ही कार्यकारी होती है। अभी हमारी पर्याय विशिष्ट है, इतना ज्ञान वाली, अभी सूक्ष्म ज्ञान चालू है हमारा, तो विशिष्ट इतना जानने रूप हमारी पर्याय प्रकट है। पर्याय है जो प्रकट है, यानी इतनी पर्याय से युक्त जो द्रव्य शक्ति है वो कार्यकारी है। हमारा कार्य कितना चल रहा है, इतना जानने का। तो हमारे पास तो द्रव्य शक्ति कितनी है, केवल ज्ञान की, परंतु अभी क्या है, विशिष्ट पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति चल रही है इसमें। अभी एक इंद्रिय में क्या है, उसकी एक इंद्रिय जितनी जानने की पर्याय शक्ति, उसकी द्रव्य शक्ति कितने जानने की है, केवल ज्ञान की है ना। परंतु पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति, द्रव्य शक्ति ने उसमें जानने की तो शक्ति है। अभी पर्याय में कितने जानने की, तो एक अकेले स्पर्शनेन्द्रिय जान रूप स्पर्शनेन्द्रिय द्वारा जानने की इतनी शक्ति। तो उस पर्याय शक्ति से युक्त जो द्रव्य शक्ति है, पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति ही कार्यकारी होती है। कार्य कार्य ने कार्य करने वाले। अभी केवल ज्ञान क्यों नहीं हमारे में, अपनी पर्याय शक्ति, अपनी पर्याय शक्ति सूक्ष्म ज्ञान रूपी होने की है। तो कार्य केवल ज्ञान का क्यों नहीं हो रहा है, क्या कार्यकारी है, तो पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति ही कार्यकारी है, कार्य करने वाली है। तो अभी जो कार्य प्रकट हुआ है पर्याय में, उतना ही होने की शक्ति है, उसको कहते हैं पर्याय शक्ति। ऐसी अभी कार्य किसने हो रहा है वर्तमान पर्याय में, क्या हाँ, तो किस पर्याय की बात चल रही है हमारी, हाँ तो जो वर्तमान समय वाली नहीं है उसको तो हम द्रव्य शक्ति में डालेंगे, उसको योग्यता में डालेंगे, वो अपने अपने समय पर प्रकट होगी। देखो पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति ही कार्यकारी होती है। द्रव्य शक्ति त्रिकाल, जो त्रिकाल पड़ी, द्रव्य शक्ति त्रिकाल है। अनादि अनंत हमारे में क्या है, केवल ज्ञान की योग्यता, केवल ज्ञान की शक्ति पड़ी है। शक्ति अंदर द्रव्य में है, द्रव्य की शक्ति की बात है। और पर्याय की शक्ति अपने अपने समय में जो पर्याय है उतनी शक्ति उस पर्याय के समय में विद्यमान है। तो क्या कहते हैं कि द्रव्य शक्ति तो नित्य है, हाँ, उद्गल में जो स्पर्श रस गंध वर्ण के गुण है, उसमें जो समझो यहाँ रेड कलर है, तो वो रेड कलर इतने परसेंट में क्यों है वहाँ, वो उसकी पर्याय शक्ति उस रूप। अभी गंध है, आम ले लो आप, पहले खट्टा था और फिर मीठा मीठा हुआ, तो उस द्रव्य शक्ति क्या है, खट्टे मीठे सारे रूप उसमें पड़ी है शक्ति। विशिष्ट समय में विशिष्ट गंध युक्त या रस युक्त उसको परिणाम नहीं की, वो पर्याय शक्ति वो पुद्गल में पड़ी है। तो द्रव्य में कितनी शक्ति है, वो सारे 20 स्पर्श रूप दोनों ले लो, तो स्पर्श के 8 ही पर्याय रूप परिणाम की द्रव्य शक्ति अंदर पड़ी है। परंतु विशिष्ट समय में विशिष्ट ही पर्याय क्यों है, तो उसकी वो पर्याय शक्ति स्पर्श में जो हल्का भारी ठंडा गर्म वो सारी जो 8 पर्याय है ना, तो कौन सा होगा उस द्रव्य में वो जो पर्याय शक्ति है, विशिष्ट समय में कौन सी उसकी वो पर्याय शक्ति। तो द्रव्य शक्ति नित्य होती है और पर्याय शक्ति अनित्य। नित्य शक्ति के आधार पर कार्य की उत्पत्ति मानने पर कार्य के नित्यत्व का प्रसंग आता है। हमारे में तो केवल ज्ञान की शक्ति है, नित्य परी है, परंतु वो नित्य शक्ति से अगर कार्य होता ही है ऐसा मानेंगे तो हर समय होना चाहिए। फिर अनादि से हम निगोद में क्यों पड़े रहे? द्रव्य शक्ति से ही कार्य पूरा पूरा होता है ऐसा मानेंगे तो कार्य के होने में पर्याय शक्ति भी था, यानी द्रव्य पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति ऐसा है ना? योग्यता तो त्रिकाली उपादान में ही ये तत्समय की योग्यता है ना। पहले तो उपादान लिया सारा, तो उसमें त्रिकाली उपादान तो पड़ा है, वो तो हमेशा ही है। जिस समय पर्याय जो तत्समय की योग्यता है उस समय त्रिकाली उपादान है कि नहीं है? वो तो कायम ही है। तो उसके साथ साथ हम उसकी योग्यता पर अभी ध्यान दें तो कहते तत्समय की योग्यता में उसमें क्या फिट किया है? पर्याय शक्ति, पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति ऐसा है। त्रिकाली उपादान तो सदैव ही विद्यमान है, परंतु इसी समय ये पर्याय क्यों हुई? तो ये पर्याय शक्ति इस समय इतने पर्याय होने की ये योग्यता रूप धर्म है। तो पर्याय शक्ति से युक्त त्रिकाली शक्ति जो त्रिकाली उपादान द्रव्य शक्ति जो तो नित्य शक्ति से ही कार्य होता है इतना ही मानेंगे तो कार्य तो हमेशा होना चाहिए, पर वैसा तो होता नहीं है। अतः पर्याय शक्ति को ही कार्य का नियामक स्वीकार किया गया है, यानी कार्य पर्याय शक्ति होगी तो कार्य होगा ही, उसको कहते हैं नियामक। नित्य शक्ति कहो, त्रिकाली उपादान कहो या द्रव्य शक्ति कहो, एक ही बात। और पर्याय शक्ति यानी उस समय की वो पर्याय होने की जो योग्यता, नियामक यानी उसको निश्चित करने वाला, कार्य को निश्चित करने वाला, कार्य होगा ही उसकी गारंटी कौन देता है? पर्याय शक्ति। पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति पूरा ही लेना। अकेली पर्याय शक्ति कहाँ आई? वो तो द्रव्य शक्ति, द्रव्य में ही ऐसी पर्याय की शक्ति पड़ी है ना। तो पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति ऐसा सारा ही लेना है। तो द्रव्य शक्ति यह बताती है कि यह कार्य इस द्रव्य में ही होगा, अन्य द्रव्य में नहीं। सम्यक दर्शन जीव द्रव्य में ही होगा, पुद्गल में नहीं, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य में नहीं, ये कौन बताता है? द्रव्य शक्ति। और पर्याय शक्ति यह बताती है कि विवक्षित कार्य विवक्षित समय में ही होगा। तो पर्याय शक्ति क्या बताती है? इस जीव का सम्यक दर्शन इसी समय होगा, ये पर्याय शक्ति। अतः न तो द्रव्य शक्ति महत्वहीन है और न पर्याय शक्ति ही, यानी दोनों ही इम्पोर्टेंट है, दोनों का ही महत्व है, पर काल की नियामक पर्याय शक्ति ही है, ही लगाया। यानी कोई भी कार्य कब होगा इसको कौन निश्चित करता है? पर्याय शक्ति। काल का दूसरा नाम भी पर्याय ही है, काल को पर्याय भी कहते हैं। यह पर्याय शक्ति अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय के वैरूप एवं तत्समय की योग्यता रूप होती है। ये जो दो पर्याय से दो अलग अलग पर्यायों पर नहीं है, एक ही पर्याय पर ये घटित होता है, क्योंकि एक ही समय में उत्पाद और व्यय है। 14वें नंबर की पर्याय उत्पन्न हुई तो यहाँ क्या क्या है? 13वें का व्यय इसी समय हुआ है, 13वें का व्यय और 14वें की योग्यता है ना, तत्समय की योग्यता, ये दोनों ही इसी एक समय पर है, उसको कहते हैं पर्याय शक्ति। एक ही पर्याय में ये पूर्व का व्यय और इस समय का उत्पाद विघटित होता है। तो क्या कहा यहाँ देखो, यह पर्याय शक्ति अनंत पूर्व क्षणवर्ती पर्याय के व्यय रूप एवं तत्समय की योग्यता रूप होती है। 14वें नंबर की पर्याय होने की शक्ति यानी क्या है? 13वें का व्यय और 14वें की योग्यता, तत्समय की योग्यता, ये दोनों मिलकर ये पर्याय शक्ति। इसलिए इसका ये 13वें का व्यय होकर 14वां ही उत्पन्न होगा, 14वें की योग्यता से 14वां ही उत्पन्न होगा, और अन्य कोई उत्पत्ति वहां हो नहीं सकती अन्य पर्याय। अतः इन दोनों की ही क्षणिक उपादान संज्ञा है, संज्ञा ने नाम चौदवी का उत्पाद नहीं, चौदवी की योग्यता, सत्समय की योग्यता, ये दोनों मिलकर शनि के उपादान है, कारण। और ये तो हुआ कार्य, चौदवी की पर्याय हुई, ये हुआ कार्य। तो ये पर्याय शक्ति ने क्या है, पूर्व पर्याय का व्यय और सत्समय की योग्यता, ये दोनों मिलकर पर्याय शक्ति, दोनों मिलकर क्षणिक उपादान है। बहुत मेहनत हो रही है समझने में, रोज दोहराएंगे उसको, इसमें कोई बात नहीं है, थोड़ा रिपीट कर करके हम आगे बढ़ेंगे। तो कुछ समझ में नहीं ना, दूसरे दिन ज्यादा समझ में आता है। और अभी क्या सैचुरेट होता है ना 1.5 घंटे तक, तो फिर जरा ऊपर ऊपर बहुत अंदर बैठती नहीं है बात। हम पोहे डालते हैं ना डब्बे में, तो बैठते नहीं, जरा हिलाते ही बैठ जाते हैं और उसमें समा जाते हैं। हमको अनुभव है ना, रोज हम ये करना सार लब्धि सार ये सारे से एग्जाम सीखते हैं, करना नियुक्त विषय, तो इतना ऐसा हो जाता है कि कहाँ हम यहाँ पढ़ने को बैठे, ऐसा होता है, कुछ समझता नहीं, ऐसा हो जाता है। फिर दूसरे दिन पहले वाला आसान होता है, फिर और भारी कुछ कठिन आ जाता है। हमें घबराने की चिंता नहीं, वो तब समय की योग्यता है कि नहीं, ज्ञान के पर्याय में। चलो आज इसीलिए क्षणिक उपादान को कार्य का नियामक कहा गया है। अब यही उसके ज्ञान है।